اب چلیں گے ہم اگلی چیز پہ، اور وہ ہے حج اور عمرے میں متابعت کرنا. متابعت کیا؟ تبعہ سے آگے پیچھے لگانا، یعنی حج کیا پھر عمرہ کیا، پھر حج کیا پھر عمرہ کیا، دو عمرے کر لیے، پھر ایک سال حج نہ کر سکے پھر کر لیا. تو یہ چیز بھی حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق لانے والی ہے کہ مستقل کریں. اب عقل تو اس کو نہیں مانتی، کیونکہ حج بھی بہت مہنگا ہے اور عمرہ بھی کوئی سستا نہیں ہے. تو پھر دو چیزیں اس ٹاپک کے انڈر ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر ایک، حج اور عمرے کی مطابعت کیا ہے، بار بار اس کا کرنا اس سے کیا مراد ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہ رزق کی چابی ہے، اس کی کیا دلیل ہے قرآن اور سنت میں. تو پہلی بات سمجھ لیجئے، حج اور عمرے کی مطابعت سے کیا مراد ہے، ایک کو دوسرے کا تابع کرو، یعنی جب حج ادا کر لو تو عمرہ ادا کرو، اور جب عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ تو حج کی ادائیگی کی تیاری کرو، کیونکہ یہ دونوں یکے بدیگرے آتے ہیں. یہ ابو الحسن سندھی کی تفسیر ہے اس حدیث کے بارے میں. تو کیا پتہ چلا کہ کوشش کیجیے، عقل تو نہیں مانے گی اس کو، ہائے ہائے یہ کیسے اتنے پیسے لگ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ دے گا مختلف طرح سے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ ابن خزیمہ اور ابن حبان میں بھی دلائل ہیں ابن مسعود سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حج اور عمرہ کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو چیل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہے. یہ ہے جی دلیل، یعنی یہ حدیث آئے گی اس پوائنٹ کے اندر کہ حج اور عمرہ مستقل کرنے سے رزق ملتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ انسان کو پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ، امیجن کیجئے نا، حج کیا سب گناہ معاف، واپس آ کے پھر کچھ گناہ ہو گئے، دو چار چھ مہینے کے بعد پھر عمرے پہ گئے وہ بھی صاف. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسے رزق ملتا ہے. اس حدیث کے وہ لفظ لکھے نا کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو دور کرتے ہیں، تو فقر دور ہو گیا تو رزق تو مل ہی جائے گا نا. اور پھر یاد رکھیے کہ غربت اور افلاس کا خاتمہ بھی ہوگا اور گناہ بھی مٹیں گے. اور اللہ کے نبی جو بات کہتے تھے نا خود سے نہیں کہتے تھے، کیونکہ وما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا، وہ اپنی نفسانی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وہ وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خبر قرآن پاک میں سورۃ نجم کی آیت 3 اور 4 میں دے دی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کا یقین رکھیں، جب اللہ نے کہہ جو دیا تو کیا. اور اس پہ بہت سارے واقعات ہیں صاحب عمل لوگوں کے کہ جب غربت ہے یا کاروبار نہیں چل رہا، رزق تھوڑا ہے، جو تھوڑے بہت پیسے بچے ہوتے ہیں نا، لوگ تو کہتے ہیں نا اوروں سے قرضہ لو اور اس سے کاروبار شروع کرو، وہ کہتے ہیں ہم نے وہ پیسے پکڑے عمرے پہ چلے گئے. گھر والے چاہے چیختے چلاتے رہ جائیں، کچھ بھی کر دیں کہ کیسے کیا ہوگا وٹ ایور، لیکن وہ کہتے تھے نہیں. اور کہتے ہیں وہ حج اور عمرہ کرنے کی دیر تھی، اور اس کے بعد اللہ نے ایسے دروازے کھولے رزق کے کہ پھر اللہ کے حکم سے کبھی کمی نہیں ہوئی اس کے بعد. اور یہ جو بات ہے نا کہ صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے، اس سے بھی فقر دور ہوتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم واقعی ان باتوں پہ یقین کرتے ہوئے عمل کریں. اور اگر ایک سوال میں بھی خود سے پوچھ لوں اور آپ سے بھی آپ خود پوچھ لیں تو زیادہ اچھا نہیں، کہ آپ نے حج کر لیا، وہ کیا چیز ہے جس نے آج تک آپ کو حج سے روکا ہوا ہے؟ کہیں آپ کا بزنس تو نہیں ہے، کاروبار تو نہیں ہے، جاب سے چھٹی تو نہیں ملتی؟ تو اللہ کرے کہ اس سال حج کی اجازت مل جائے تو جائیے حج کر لیجئے، کیونکہ حج نہ کرنا خطرے میں پڑنا ہے. جس پہ حج فرض ہے وہ حج نہ کرے، نہ ارادہ کرے نہ نیت، تو اس کی موت بڑی مشکوک موت ہے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرائض کو پورا کرنے والا کم از کم ضرور رکھے. اور اب اس کے بعد ہم اس چیز پہ غور کرتے ہیں کہ حج کیوں دور کرتا ہے. مثلا آپ دیکھیے، ایک مائنڈ میپ ہے آپ کے سامنے کہ حج کے ارکان کیا ہیں. نمبر ایک، احرام. آپ کو حج اور عمرے کے لیے ایک خاص ڈریس کوڈ چاہیے اور ایک حالت چاہیے، وہ احرام. یہ کس سے ملتی ہے؟ کفن سے ملتی ہے. پھر طواف، طواف زیارت کرتے ہیں، گھومنا، چکر لگانا، یہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا قبلہ اور آپ کی کوششوں کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس پرانے گھر کا طواف کریں. تو طواف میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی کی دوڑ دھوپ اللہ کی طرف ہوگی. پھر اس میں سعی ہے، اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ بی بی حاجرہ کی یادگیری ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کیسے کوشش کرتی تھی، اللہ نے زمزم جیسا رزق دیا. तो आप कोशिश करेंगे तो जमजम ना भी मिल जाए तो पानी तो मिलेगा ना। और फिर इसी तरह मैदाने अराफात में वकूफ, वो तो आपको बताता है कि आपकी जिंदगी बस इन्हीं चंद चीजों के ऊपर चल सकती है। आपने न जाने किस किस चीज को अपने अंदर डाला हुआ रखा हुआ है। फिर कुछ हज के वाजिबात है जो इस वक्त हमारे लिए इतने जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ तस्करे की खातिर मीकात से पहले एहराम बांधना, मखसूस जगहों पर एहराम की चादरें जेब तंत्र करना, और फिर दिन में वकूफ़े अरफा करने के लिए गरूब आफ्ताब तक मैदान अरफा में ठहरना, फिर इसी तरह याम तशरीक की रातें मीना में गुजारना, और मुजदलिफा में रात के निस हिस्से तक भी पहुंच जाएं तो फिर वहां क्याम करना, फिर इसी तरह तरतीब से कंकरियां मारना, बाल मुंडवाना, कतरवाना, तवाफ विदा करना। तो ये हज के अरकान है, जरा से एक एक पे गौर कीजिए। अकल में तो ये बातें नहीं आती, बस इतना समझ आता है कि बे खुदी में अल्लाह सुबहान तआला की बात को मान लो जो वो कहता है। तो हज के अरकान के बाद देखिए, अगर तो उम्रे के अरकान, एहराम बांधना, तवाफ करना और सही करना, ये उम्रे के वाजिबात है। बाल मुंडवाना या कुतरवाना और मीकात से एहराम की चादरें ज़ेब-तर करना, ये चीजें अल्लाह के नबी से हमें पता चलते हैं। अब यहां हमने हज और उम्रे के फवायद तो पढ़ लिए, क्या सिर्फ रिस्क ही मिलता है? नहीं, हज और उम्रे से कुछ और फायदे हैं। हज के फवायद क्या हैं? कि हज दीन इस्लाम का एक रुकन है, दीन इस्लाम इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता, और यही अल्लाह सुबहान तआला की मोहब्बत की दलील भी है कि बंदा मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है। और उसके बाद फिर हज अल्लाह की राह में किस्म का जिहाद भी है। जो शरीयत के मुताबिक हज करता है उसको बहुत बड़ा अजर मिलता है। फिर इसी तरह आप देखिएगा, इसमें अल्लाह सुबहान तआला का जिक्र और उसकी ताजीम है, उसके जो शुआर हैं जिसको रिचुअल्स कहते हैं उसका इजहार है। और सबसे बड़ी बात कि हज में दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से मुसलमान आते हैं, आपस में मोहब्बत मवद्दत का तबादला होता है, सब मुसलमान एक ही लिबास पहनते हैं, एक ही जगह पर रहकर एक ही तरह का अमल करते हैं। तो कह लीजिए कि खुलासा क्या है कि हज पूरे दीन इस्लाम का एक बहुत बड़ा रुकन है, जिसमें बहुत सारी इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाली चीज़ें आ जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, मैं भी कर लूँ, आप भी करें, कि हमें अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके लिए असबाब बनाए। मैं आप सब सुनने वालों को दुआ दूंगी कि इस वक्त जितने लोग हमारे साथ इसको सुन रहे हैं और इंशाल्लाह बाद में भी तवज्जो से गौर से सुनेंगे बैठकर, अल्लाह ताला उन सब को भी बेहतरीन तरीके से हज करने की तौफीक दे और उम्रे की अदायगी बार बार हम सबको नसीब करें। आज के सेशन की आखिरी चीज, एक और चाबी, क्योंकि हमने तैयारी करनी है तो तैयारी तो मुश्किल होती है, सख्त होती है। तो रिस्क को लाने वाली चीजों में से एक चीज सिला रहमी है, मेंटेनिंग टाइज ऑफ किनशिप। सिला रहमी क्या होती है और इससे क्या फायदे होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और अफसोस के साथ कहूंगी कि आज कई लोग इसको दीन ही नहीं समझते, कोई ये कहते हैं तो दुनियादारी है। तो सिला रहमी का मफहूम क्या है और ये रिस्क की चाबी है, इसके 6 दलाइल हम पढ़ेंगे। और तीसरी चीज हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि सिला रहमी किस चीज के साथ और कैसे की जाए। और एक सवाल जो बहुत उठता है कि रिश्तेदार नाफरमान है, अल्लाह की बात नहीं मानते, जिसको हम अपनी रौनत में कहते हैं बड़े गुनाहगार और मुनाफिक किस्म के रिश्तेदार हैं जी, बेनमाजी रिश्तेदार, अब उनके साथ सिला रहमी कैसे की जाए। ये 4 चीजें इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगी सिला रहमी के मफहूम में। तो पहली चीज क्या है कि सिला रहमी है क्या। अरबी जुबान में सिला रहमी के लिए सिलातुर रहम के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं और रहम से मुराद क्या है, रिश्तेदार। इब्ने हजर अल अस्कलानी और मुल्ला अल कारी, ये बहुत बड़े बड़े हदीस के शरह करने वाले गुजरे हैं, तो वो इसके बारे में जो बात कहते हैं, पहले हाफिज इब्ने हजर का बयान सुन लीजिए। वो क्या कहते हैं कि रहम यानी रा की जबर और हा की जेर आएगी, याद रखिएगा। कहते हैं ये लफ्ज रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और रिश्तेदारों से मुराद कौन लोग हैं, जिनमें बाहमी नस्बी ताल्लुक हो, यानी बहन भाई, नस्ब खून का रिश्ता, ख्वाब वो एक दूसरे के वारिस या महरम हो या ना हो। ठीक है, तो महरम रिश्तेदार भी कह लीजिए और गैर महरम, मसलन चचा जात, मामू जात और बहन भाई, सब दूसरे मुराद एक जनरल बात है। इसी तरह मुल्ला अली कारी कहते हैं कि नस्बी और ससुराली रिश्तेदारों के साथ एहसान किया जाए और इनके साथ शफकत और हमदर्दी का मामला किया जाए और इनके हालात की देखभाल और पासदारी की जाए। दोनों बातों को जमा करूं, सारे रिश्ते आ गए, सगे रिश्ते, भाई बहन, खून के रिश्ते और ससुराल और शहर के रिश्ते जो किसी भी ससुराली ताल्लुक से होते हैं, बस आपके अपने ससुराल और इसी तरह मामू और खाला के ससुराल, यानी किसी भी तरह का कोई रिश्ता, तो पता क्या चला, हर रिश्ते का एहतराम करना। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक बहुत बड़ी नेकी है और मैं कह सकती हूँ कि मुश्किल नेकी है। नमाजें पढ़ना आसान है, रोजे रखने आसान है, कभी कभी रिस्क बांटना और सदका खिरात भी आसान होता है, मुश्किल है रिश्तेदारियों को निभाना। और जब दीन सीखता है ना इंसान, तो फिर तो और भी गड़बड़े हो जाती हैं। पहले सब एक जैसे काम कर रहे होते हैं तो हम सब एक कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ क्या होता है, जरा सा आपको अल्लाह ने दीन ज्यादा दिया, बस ये भी गुनाहगार, ये भी नहीं, हम क्यों मिले, ये तो गलत। तो याद रखिए, ये ना समझे की बात है। अल्लाह के नबी सल्लम ने 13 साल मक्का में अपने खूनी रिश्तेदारों के साथ जिस तरह का मामला किया, वह आपके मेरे लिए जरबुल मिसल है। जरूरत है इस बात की कि अपने आप को हम रिश्तेदारियों के नाते से देखें, और मुहासबा तो बहुत ही जरूरी होता है। चलते हैं इस बात पे कि सिला रहमी के कलीदी रिस्क होने के दलाल, कि वाकई रिश्तों को मिलाने से रिस्क मिलता है। इसके बारे में चंद रिवायतें सुननी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब तक हम अल्लाह के नबी सल्लम के अल्फाज नहीं सुनते, हमें बात समझ नहीं आती। तो पहली रिवायत इमाम बुखारी से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए हम तक पहुंची। मन सर्रहु अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही वअन युनसा लहु फी असरिही फलयसिल रहमा। रिवायत है बुखारी की और तर्जुमा क्या है कि जो ये चाहे, जिसको ये पसंद हो, और मजे की बात है, हमें से हर एक को ये पसंद होता है, क्या जो शख्स अपने रिस्क में कुशादगी और उम्र में इजाफा पसंद करे, वो सिला रहमी करे। यहां रुक के तरह एक सवाल करते हैं खुद से, क्या मैं चाहती हूँ कि मेरी रिस्क बढ़े? बिल्कुल चाहते हैं, हर बंदा चाहता है। और क्या मैं चाहती हूँ कि मेरी उम्र लंबी हो? आसान सा जवाब है कि रिश्तेदारों से अच्छा मामला कीजिए। नेक्स्ट रिवायत देखिए, बुखारी की रिवायत हजरत अनस से हम तक पहुंची। मन अहब्बा यबसुत लहू फी रिज़्क़िही वमन युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहम। यानी वही बात एक और रेफरेंस से भी मिल गई कि जो शख्स अपने रिस्क में फराखी और अपनी उम्र में इजाफा पसंद करे, वो सिला रहमी करे। तो इन दोनों में सिला रहमी के जरिए उम्र के इजाफे की बात है। अब ये इजाफा कैसे होता है, इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। मसलन मिसाल देती हूँ कि अगर उम्र वाले फरिश्ते से कहा जाए कि अगर फलां शख्स ने सिला रहमी की तो इसकी उम्र 100 साल होगी, और अगर इसने अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक काटा तो बस 60 साल होगी। ये भी पता, अल्लाह को तो पहले से ही पता था कि ये बंदा रिश्तेदारों से अच्छा मामला करेगा कि नहीं करेगा, और उम्र की हकीकी मुद्दत भी अल्लाह ताला के इल्म में, उसमें कमी बेशी नहीं होती, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे और हम दुआ करें। लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये बात आपको मुझे यकीन दिलाने के लिए है कि अल्लाह जो चाहे मिटाए, जो चाहे लिखाए। सूरत रात की आयत 39 में यमहुल्लाहु मा यशाउ व युसबितु व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह ताला जो चाहते हैं मिटाते हैं, जो चाहते हैं साबित करते हैं, और उनके पास लोहे महफूज है। तो जिसने किताब लिखी होती है, वो चाहे तो उसके 2-4 पेज निकलवा दे, कर दे, तो इस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन बात गौर करने की क्या है कि दो नतीजे, नंबर एक रिस्क की वसत और उम्र में इजाफा, कितनी खुली पेशकश है, ऑफर है। और सारी दुनिया में सबसे सच्चे इंसान की जुबान से ये बात अल्लाह ने हमें आपको पहुंचाई, क्या इसमें किसी को शक हो सकता है? और ये दो चीजें बंदे के दिल में छुपी होती हैं कि उम्र भी लंबी हो और रिस्क भी हो, तो इसको पाने के लिए सिला रहमी करनी है। और इसी तरह से एक और रिवायत इमाम इब्ने हब्बान से हजरत अनस के थ्रू हमें मिली, सिला रहमी करने वाले के लिए पुरअमन और रिस्क में भरपूर बरकत वाली उम्दा जिंदगी मिलेगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तअल्लमु मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहमकुम फइन सिलतर रहमी महब्बतुम फिल अहली मसरातुम फिल माली मनसातुम फिल उमरी। अपने कराबत दारों के मुतल्लिक मालूमात हासिल करो, यानी सारी दुनिया की खबर तो होती है, चिट चैट करते हो कभी, गरीब रिश्तेदारों के भी तो हाल पूछो कि उनके पास क्या, ताकि सिला रहमी कर सको। बिलाशुबा सिला रहमी से खानदान में मोहब्बत, माल में कसरत और उम्र में इजाफा होता है। तो आज से रमजान तक अपने हर करीबी दूर के रिश्तेदार से राबता कीजिए, सब ठीक है, कोई मदद चाहिए, किसी को राशन भेज दीजिए, किसी को खजूरें भेज दें। ये फालतू वक्त जो हम अपना फेसबुक पे इधर उधर लगाते हैं दोस्तों दोस्तियों के नाम पे, तो हमारे गरीब रिश्तेदारों के पास तो शायद फेसबुक भी ना हो, फोन ही ना हो, नेट ही ना हो। तो जरा सा खानदानों में भी गौर कीजिए। और आप देखिए, तीन समरात अल्लाह के नबी ने बताए सिला रहमी के, इसमें माल भी बढ़ेगा और उम्र भी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है आप अल्लाह के हुक्म से। और इसी तरह एक रिवायत बहुत सारे रेफरेंसेस से हजरत अली के नाते हम तक पहुंची, तबरानी में भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मनसर रहो यमुद्दलहु फी उमरी ही व युवस्सा अलैहि फी रिज़्क़िही व युदफ़अनहु मैततु सुई फलयत्तक़िल्लाह वलयस्सिल रहीमहु। इसको तो पल्ले से बांध लीजिएगा। तर्जमा सुनेंगे खुश हो जाएंगे। क्या फरमाया आपने, जो शख्स इस बात को पसंद करे कि इसकी उम्र में इजाफा हो, इसके रिस्क में वसत हो और इससे बुरी मौत दूर की जाए, वो अल्लाह ताला से डरे, तकवा, पीछे भी आ गई थी बात जहां भी आ गई, और सिला रहमी करे। तो अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन मामला करने वाला बना दे। रिस्क के साथ साथ ये सारी चीजें बढ़ेंगी। और एक रिवायत इमाम बुखारी अब्दुल्ला बिन उमर से लाते हैं, मन इत्तका रब्बहु, जो शख्स अपने रब से डर जाए, दुआ करें अल्लाह मुझे भी डाल दे, बस वसला रहमहु, और रिश्तेदारियों को जोड़े, नुस्सिया लहू फी उम्रिही वसर आ मालुहु वहब्बहु अहलुहु। क्या फायदे हैं इसको नोट कीजिएगा, इसकी उम्र में इजाफा किया जाता है, इसका माल ज्यादा हो जाता है और इसके खानदान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं। क्यों करेंगे मोहब्बत, इसलिए कि आप उनका ख्याल रखते हैं। कभी अपने खानदान वालों से भी जरा ले लीजिए एक सर्वे, क्या आप मुझे क्या कहते हैं, मेरा अले गम से बेहोश ना हो जाए हम में से कुछ लोग, क्योंकि गैर तो हमें बहुत अच्छा कहते हैं, रिश्तेदार तो हमारे से खुश ही नहीं है। तो जितना ज्यादा रिश्तेदारियों को जोड़ेंगे उतनी अल्लाह की रहमतें आप पे आएंगी। एक और रिवायत सुन लीजिए, इब्ने हब्बान में अबू बकरा से है, अबू बकर नहीं है ये अबू बकरा है, अल्लाह के नबी से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, इन्ना जलताती सवाबन सिलतुर रहीम حتى إن أهل بيت ليكون فجرة فتمنوا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا وما من أهل بيت يتواصلون ويحتاجون। बहुत प्यारी रिवायत है, हवाले इसके बहुत सारे हैं, तर्जमा सुन लीजिए जो आपको मुझे याद रहेगा। तमाम नेकियों में सबसे ज्यादा जल्दी सवाब सिला रहमी का मिलता है, यहां तक कि जब किसी बुरे और नाफरमान घराने के लोग सिला रहमी करते हैं तो इनके मालों में अफजाइश यानी बढ़ोतरी और तादाद में इजाफा होता है। किसी भी सिला रहमी करने वाले कुंबे के लोग मुख्ताज नहीं होते। अल्लाह की वाह, अल्लाह अकबर कबीरा। तो अब अगला सवाल लीजिए कि सिला रहमी किस चीज के साथ और कैसे की जाए। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिला रहमी सिर्फ माल के जरिए से होती है, तो ये सिला रहमी का अधूरा और नाकिस तसव्वुर है। सिला रहमी का दायरा इससे कहीं ज्यादा है। रिश्तेदारों और अजीजों को खैर पहुंचाना और इनसे शर को दूर करना, और इस सिलसिले में हर कोशिश सिला रहमी है, चाहे इस पे आप माल लगाएं, कोई और जरिया इख्तियार करें। इस पे अभी जमरा का एक कॉल है, कहते हैं कि सिला रहमी माल के जरिए से। नंबर एक लिखिए, आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें मिलेंगी। नंबर एक, माल लगाइए रिश्तेदारों पे। दूसरी बात है जरूरत के वक्त तआवुन करने से। तीसरी बात है मुसीबत दूर करने के लिए कोशिश करने से। और चौथी चीज है खंदा पेशानी यानी स्माइली फेस से मुलाकात करने से। और अगली चीज है कि उनके लिए दुआ करने से हासिल होती है। कितना जामे और कॉम्प्रिहेंसिव तसव्वुर है सिला रहमी का। एक जुमला लिख लीजिए, हर मुमकिन खैर पहुंचाने की कोशिश कीजिए रिश्तेदारों को, और हत्तुल इम्कान उनसे शर को दूर कर दें। आखिरी नुक्ता कि नाफरमान और बुरे लोगों के साथ सिला रहमी कैसे की जाए, तो बात यह है कि उनकी गलत महफिलों को डिस्करेज कीजिए, वक्त से पहले उनको इससे रोकिए, बजाय इसके कि आप उनकी गलत चीजों का शिकार हों और आपके मामू हैं तो आना ही पड़ेगा, खाला के बगैर तो शादी नहीं होती, ऐसा ना कीजिए। अपने वो रिश्तेदार जो भी दीन से दूर हैं उन तक दीन पहुंचाइए, आजकल बेहतरीन दिन है, दौरे कुरान आने वाला है। इस कुरान के मुख्तसर से सफर को जो आप और मैं इंशाल्लाह पूरा महीना कर देंगे, तो उससे अपने रिश्तेदारों को आगाह कीजिए। हर एक के पास फोन पे कॉन्टेक्ट लिस्टें होती हैं, आप उनके साथ शेयर कीजिए, खुद फोन पे बात करके बताइए, क्लास से पहले उनको लिंक दीजिए, फोन पे बात करें कि अच्छा इस वक्त है, यानी बच्चे की तरह उंगलियां पकड़ कर बात कीजिए। आपने नहीं बचना, उनको भी बचाना है। और इंशाल्लाह इस पे हम अल्लाह की रहमत से कुछ बात करेंगे बाद में। आप देखिए कि जब नया नया दीन आया तो रिश्तेदारियां क्या थी, काफिर और नाफरमान थे, यानी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इनके रिश्तेदार कुफर पे थे। तो फिर उनसे तरीका पूरा सिखाया गया। सूरत मुमताहिना आज कुरान में पूरी की पूरी इस मौजू पे बात करती हुई दिखती है। तो गलत कामों में शरीक नहीं होना और गलत चीज़ों पे नहीं आना। और दीन का ये तकाजा और ईमान का तकाजा कि अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन चाहे बाप, बेटे, भाई क्यों ना हो, गलत बातें उनकी नहीं माननी। और जालिम भाई को जुल्म से रोकना, ये उसकी मदद करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपने फरमाया अपने भाई की मदद करो चाहे जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, जब वो मजलूम हो तो मैं मदद कर लूंगा, लेकिन जालिम की मदद कैसे करूं? तो कहा कि उसको जुल्म से रोकिए। तो सिला रहमी करने वाले अपने से जुड़े हर रिश्तेदार को सिरात मुस्तकीम की दावत दें, ये बेहतरीन सिला रहमी है। आखिरी चंद जुमले सिला रहमी के फवायद क्या पड़े? नंबर एक, अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है, ईमान की अलामत है, रिस्क में कुशादगी और उम्र में बरकत का जरिया है, और सिला रहमी करने वाले जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। जब सिला रहमी के इतने फायदे हैं तो कतअ रहमी, जो उसका ऑपोजिट है, यानी रिश्तों को ना जोड़ना, इसके भी कोई नुकसान है, तो वो भी सुन लीजिए। नंबर एक, अल्लाह का नापसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला ने सूरत मुमताहिना में भी और दूसरी जगह पे भी बात की कि अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह के अहद को इसकी मजबूती के बाद तोड़ देते हैं और जिन चीजों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया इनको तोड़ते हैं, तो जमीन पे फसाद फैलाते हैं, उनके लिए अल्लाह की रहमत से दूरी है और बुरा घर है। और मुस्तद अहमद की रिवायत है कि कतअ रहमी करने वाले को दुनिया में ही सजा मिल जाती है। और हदीस में आता है कि बगावत और कतअ रहमी ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला आखरत के साथ दुनिया में भी दे देते हैं। सिलसिला सहीहा की रिवायत 2372 भी है, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर से अल्लाह के नबी ने फरमाया, हमारे लिए अपनी उंगली को आपने मरोड़ा, जैसे बैठकर इंसान उंगली मोड़ता है ना, तवज्जो लेने के लिए ये एक अंदाज होता है। फिर फरमाया, सिला रहमी रहमान से मिली हुई शाख है, इसकी एक फसीह व बलीग जुबान है, जिसे चाहती है जैसे चाहती है कलाम करती है। जिसने इस सिला रहमी को मिलाया अल्लाह इसको मिलाएगा, और जिसने इसको काट दिया अल्लाह ताला इसको काट देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरा सेशन तकमील पे पहुंचा, करना क्या है, करने के काम। नंबर एक, गाहे बगाहे रिश्तेदारों से मुलाकात कीजिए, छोटी मोटी बातों को ख्वाम खा अपनी अना का मसला न बनाए। नंबर तीन, खुशी और गम के मौके पर इनके साथ शामिल हुआ जाए। फिर अगली बात है, खानदान के बड़ों की इज्जत और तौकीर की जाए। अगर कोई रिश्तेदार घर में मिलने के लिए आ जाए तो इसका अच्छी तरह इस्तकबाल किया जाए। और सबसे बड़ी बात कि रिश्तेदारों की इस्लाह की फिक्र की जाए और उनको कुरान से, हदीस से जोड़ा जाए, इल्मी महफिलों की दावत दी जाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें नेक आमाल की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैराती व तर्कल मुनकराती व हुब्बल मसाकीन व अन तग़फिर ली व तरहमनी व इज़ा अरदत फ़ितनतन फ़ी क़ौमिन फ़तवफ़नी ग़ैर मफ़तून व अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमली युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। ए अल्लाह, अब बस दुआ के लिए हाथ उठा ले, दिल भी आपका बर्तन बन जाए जिसमें आपने इल्म की इस महफिल के अंदर अल्लाह से दुआ मांगनी है। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे नेकियां करने, बुराइयों से बचने और मिसकीनों से मोहब्बत का सवाल करता हूं, और ये कि तू मुझे बख्श दे, मुझे यकीन है कि आप आमीन कहेंगे अपनी अपनी जगह पे, और मुझ पर रहम फरमा, और जब तू किसी कौम को आजमाइश में मुबतला करने का इरादा करे तो मुझे बगैर आजमाइश के फौत कर दे। मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, और इसकी मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करता है, और इस अमल की मोहब्बत का जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसन जज़ा, आपके सब्र का, आपके पेशेंस का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।